नमस्कार ग्रंथसार में। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो दिल को छू भी जाती है और हाँ, सोचना पर मजबूर भी करती है। ओशन वुंग का उपन्यास द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस, मतलब खुशी का सम्राट।
हाँ।
वुंग एक वियतनामी अमेरिकी कवि और उपन्यासकार हैं। उनकी आवाज समकालीन साहित्य में आप कह सकते हैं बहुत खास है।
बिल्कुल।
उनकी लेखनी में आपको आप्रवासन का दर्द, पहचान की तलाश, परिवार के जो जख्म होते हैं और भाषा की ताकत, ये सब जैसे बुना हुआ मिलेगा।
हाँ, उनकी भाषा में एक अलग ही बात है।
ये उपन्यास, ये जो 2023 में आया, ये उनके कवि से उपन्यासकार बनने के सफर का एक अहम पड़ाव है।
इसका शीर्षक ये देखिए, खुशी का सम्राट।
हाँ, इसमें एक अजीब सा विरोधाभास है ना।
बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे
ये इशारा करता है कि शायद खुशी और दुख वो दो अलग किनारे नहीं बल्कि एक ही नदी के दो पहलू हैं।
सही कहा, जुड़े हुए पहलू।
तो आज की हमारी चर्चा इसी उपन्यास की गहराइयों में उतरेगी। हम कहानी के ताने बाने को देखेंगे, किरदारों के अंदरूनी सफर को समझने की कोशिश करेंगे और उन बड़े सवालों को भी जो वुंग उठाते हैं, खासकर ये कि क्या गहरे जख्मों के बीच भी खुशी को चुना जा सकता है।
बिल्कुल, और ये सवाल इस कहानी के मतलब बिल्कुल केंद्र में है। ये उपन्यास हमें कनेक्टिकट में बसे एक वियतनामी अमेरिकी परिवार की 3 पीढ़ियों की जिंदगी में ले जाता है।
3 पीढ़ियां।
हाँ, कहानी की शुरुआत होती है परिवार के दादा, जिन्हें सब बा कहते हैं, उनकी मृत्यु से। लेकिन ये मौत एक अंत नहीं है, बल्कि आप कह सकती हैं एक दरवाजा खोलती है।
अच्छा, कैसा दरवाजा?
एक ऐसा दरवाजा जो हमें उन सवालों तक ले जाता है कि कैसे दुख और खुशी साथ साथ चलते हैं, कैसे पीढ़ियों का दर्द विरासत में मिलता है और कैसे कभी कभी खुशी की तलाश ही एक तरह से एक बोझ बन जाती है। कहानी का सूत्रधार है मिन, एक नौजवान लड़का जो साहित्य पढ़ रहा है, और वो अपनी जड़ों और अपनी अमेरिकी परवरिश के बीच खुद को फंसा हुआ पाता है।
हाँ, ये एहसास तो कई आप्रवासी परिवारों में होता है।
बिल्कुल, दादा के जाने के बाद जब वो घर लौटता है तो उसे बिखरा हुआ परिवार मिलता है। दुख है, पुरानी रंजिशें हैं, और फिर बा के सामान में उसे मिलते हैं वियतनामी भाषा में लिखे कुछ खत।
खत? अच्छा।
हाँ, और यहीं से राज खुलना शुरू होता है, बा का छुपा हुआ अतीत। युद्धबंदी के तौर पर गुजारे साल, अमेरिका आने का संघर्ष, और सबसे बढ़कर खुशी को लेकर उनका एक अनोखा फलसफा जो मिन की मतलब पूरी दुनिया हिला देता है।
हाँ, बा का किरदार और उनका ये फलसफा शायद यही उपन्यास का दिल है। बा जो अब सिर्फ यादों और उन खतों में जिंदा हैं, एक बहुत ही पेचीदा शख्सियत बनकर उभरते हैं।
पेचीदा तो है। हमें पता चलता है कि वियतनाम युद्ध के दौरान वो 3 साल एक रीएजुकेशन कैंप मतलब पुनः शिक्षा शिविर में बंदी रहे।
3 साल?
हाँ, ये वो दौर था जिसने उन्हें तोड़ा नहीं बल्कि खुशी को चुनने का एक अजीब, लगभग अड़ियल सा नजरिया दिया। उन्होंने इसे खुशी का लोकतंत्र कहा।
खुशी का लोकतंत्र, ये दिलचस्प है। ये कोई भोलापन नहीं था बल्कि मुश्किल हालात में अपनी अंदरूनी आजादी को बचाए रखने का एक तरीका था, एक प्रतिरोध था।
और ये सोचना कितना अजीब है कि उन्होंने जानबूझकर अपने परिवार को अपने दर्द की कहानी से दूर रखा।
हाँ, खतों से यही पता चलता है
कि वो उन्हें उस तकलीफ से बचाना चाहते थे।
लेकिन इसमें गहरा विरोधाभास भी छुपा है ना?
कैसा विरोधाभास?
मतलब किसी को दर्द से बचाना कभी कभी उन्हें उस दर्द से मिली ताकत से भी दूर कर देता है।
अच्छा।
हाँ, ये बात तो है।
खुशी का सम्राट, ये नाम बाकी इसी भूमिका की तरफ इशारा करता है। वो अपने परिवार की खुशी के पहरेदार बनना चाहते थे, एक ऐसी भूमिका जो प्यार से भरी थी पर कहीं ना कहीं सीमित करने वाली भी थी।
बिल्कुल, और इसी कश्मकश में फंसी है मिन की माँ, माई।
हाँ, माई।
वो बीच की पीढ़ी है, अपने पिता के खामोश कवच और अपने बेटे की सच जानने की बेचैनी के बीच। एक नर्स के तौर पर उसने अपनी जिंदगी व्यवहारिकता और देखभाल के इर्द गिर्द बुनी है।
प्रैक्टिकल
लगता है, जैसे उसने बाग के फलसफे को अपना लिया है कि गुजरे हुए कल पर रोने से बेहतर है आज पर ध्यान देना। लेकिन जैसे जैसे कहानी खुलती है, हमें माई की अपनी अंदरूनी लड़ाई दिखती है।
हाँ, दिखती है। बा की चुप्पी का असर माई पर मिन से अलग हुआ। मिन को लगता है कि वो अपनी जड़ों से कट गया है, जबकि माई को शायद इसी चुप्पी ने अमेरिका में एक स्थिर जिंदगी बनाने की जगह दी।
हो सकता है।
उसके अपने जख्म हैं, एक अप्रवासी औरत होने के नाते नस्लवाद, गरीबी, अपनी संस्कृति से दूर होने का दर्द। खुशी के साथ उसका रिश्ता बा से ज्यादा उलझा हुआ है।
कैसे?
वो शायद बड़ी खुशियों के पीछे नहीं भागी, उसने स्थिरता और संतोष में अपनी जगह बनाई। लेकिन जब बा की कहानी की पूरी सच्चाई सामने आने लगती है तो वो भी उन खतों को पढ़ने का मुश्किल फैसला करती है।
तो वो खत पढ़ती है?
हाँ, ये उसके लिए हिम्मत का काम है।
और मिन की यात्रा, वो तो जैसे पूरे उपन्यास का केंद्र बिंदु है।
बिल्कुल,
वो सिर्फ खतों का वियतनामी से अंग्रेजी में अनुवाद नहीं कर रहा, वो असल में अपनी पूरी विरासत, अपने परिवार के इतिहास, अपनी पहचान का अनुवाद कर रहा है।
हाँ, ये अनुवाद का रूपक बहुत गहरा है।
वो खुद को हमेशा बीच में पाता है, अमेरिकी रिश्तेदारों के लिए जरूरत से ज्यादा वियतनामी और वियतनामी दोस्तों के लिए जरूरत से ज्यादा अमेरिकी। ये पहचान की कश्मकश बहुत मार्मिक है।
बिल्कुल, उसकी प्रेमिका सारा, जो खुद दूसरी पीढ़ी की चीनी अमेरिकी है, इस कहानी में एक आईने की तरह काम करती है।
सारा जैन?
हाँ।
उसके परिवार का अपने इतिहास से जुड़ने का तरीका अलग है, शायद ज्यादा खुला, पर साथ ही अपनी जड़ों से कुछ दूर भी। ये दिखाता है कि हर परिवार अपने अतीत और अपनी नई दुनिया के बीच संतुलन बनाने का अलग रास्ता चुनता है।
और आपने अनुवाद की बात छेड़ी, ये इस उपन्यास का एक बहुत शक्तिशाली रूपक है।
हाँ बिल्कुल,
सारा का अकादमिक काम भी अनुवाद सिद्धांत पर है, ये कोई इत्तेफाक नहीं लगता?
नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वांग जैसे दिखाते हैं कि सिर्फ भाषा का ही अनुवाद नहीं होता, बल्कि दुख, खुशी, खामोशी, यहाँ तक कि पीढ़ियों का दर्द भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसलेट होता है।
और इस प्रक्रिया में उसका मतलब बदल जाता है।
हाँ, ठीक वैसे ही जैसे किसी कविता का अनुवाद करते होता है।
बिल्कुल।
सवाल ये है कि इस अनुवाद में क्या खो जाता है और क्या नया बन जाता है।
सही कहा।
और ये हमें कहानी के उन अहम मोड़ों पर ले आता है जहाँ ये अनुवाद होता हुआ दिखता है। जब मिन पहली बार खत पढ़ता है तो उसे बा की आवाज मिलती है।
क्या कहता है वो खत?
कि खुशी कोई मिलने वाली चीज नहीं बल्कि बनाने वाली चीज है,
बनानी पड़ती है।
हाँ, फिर धीरे धीरे पढ़ते खुलती हैं री एजुकेशन कैंप के वो साल, जहाँ बा ने क्रूरता के बीच खुशी के छोटे छोटे लोकतंत्र बनाए।
छोटे छोटे लोकतंत्र?
हाँ,
मतलब
ऐसे पल जिन्हें वो नियंत्रित कर सकते थे, जहाँ वो थोड़ी सी सुंदरता या जुड़ाव महसूस कर सकते थे।
अच्छा,
मुश्किल हालात में भी।
हाँ, ये जानना कि माएँ खतों के बारे में जानती थी पर पढ़ती नहीं थी, ये भी एक अहम मोड़ था। जानना और समझना, ये दो अलग बातें हैं।
ठीक है।
हाँ
बिल्कुल,
एक जानकारी होना और उसे महसूस करना।
फिर वो कहानी में मोड़ आता है जब पता चलता है कि कुछ खत गायब हैं।
गायब?
हाँ।
ये मिन को कैलिफोर्निया ले जाता है अपने चाचा डुक से मिलने।
डुक एक और किरदार,
और डुक का किरदार बाके फलसफे पर एक और रोशनी डालता है। जहाँ बा ने खुशी चुनी, डुक ने गुस्सा चुना, वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए।
अच्छा, तो बिल्कुल अलग रास्ता।
बिल्कुल, डुक से ही पता चलता है कि बा के वियतनाम से भागने की कहानी में एक और परत है।
क्या?
पीछे छूटा हुआ परिवार, पहली पत्नी, एक बेटी।
ओहो, ये तो।
हाँ, अचानक बा की खुशी की तलाश पर सवाल उठने लगते हैं। क्या ये ज्ञान था या अपराध बोध से भागने का तरीका?
ये खुलासा कहानी को और भी उलझा देता है।
हाँ, बा अब सिर्फ एक आदर्श नायक नहीं रह जाते, उनकी कहानी में त्याग है, मुश्किल चुनाव है, शायद कुछ गलतियां भी हैं। सारा की वो बात याद आती है, शायद खुशी का सम्राट कभी राजशाही बनने के लिए नहीं था।
मतलब ये कि खुशी किसी एक इंसान की बपौती नहीं हो सकती।
हाँ, शायद यही, शायद इसीलिए माई का उन खतों को पढ़ने का फैसला इतना जरूरी हो जाता है
कि वो खुद समझे।
हाँ, वो अपने पिता की कहानी को सिर्फ उनकी शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी समझ से जानना चाहती है।
और कहानी का अंत वो बहुत शक्तिशाली है।
हाँ, अंत बहुत भावुक है।
परिवार जब मिलकर बा की पूरी कहानी को समझता है, उनके जख्म, उनका चुनाव, उनका प्यार, तो वो उन्हें खारिज नहीं करते। वो समझते हैं कि बा ने अपने दर्द को नकारा नहीं था बल्कि उसे एक विरासत में बदलने की कोशिश की थी, अपने बच्चों के लिए एक तोहफे में,
एक तरह से।
मिन जब अपनी पढ़ाई पर लौटता है तो उसके लिए अपने परिवार की कहानी खुद एक अनुवाद परियोजना बन जाती है।
उपन्यास के आखिर में बा की बरसी पर जब परिवार उनकी कब्र पर जाता है तो जोर मातम पर नहीं जीने पर होता है।
जीने पर।
और मिन अपने खत लिखना शुरू करता है बा को, वियतनाम में अपनी उस अनजान सौतेली बहन को, आने वाली पीढ़ियों को।
अच्छा,
यही मिन को एहसास होता है कि खुशी का सम्राट अकेले राज करने के लिए नहीं था, उसका मकसद शायद ऐसी जमीन तैयार करना था जहां दूसरे अपनी खुशी पर अपना हक जता सकें, अपनी संप्रभुता का दावा कर सकें।
तो ये जो फलसफा है खुशी का लोकतंत्र, ये आखिर में क्या सिखाता है, क्या ये बाकी कहीं वो बात सच है जो उन्होंने एक खत में लिखी थी? मेरे प्यारे खुशी के सम्राट, आज मैंने सीखा कि खुशी दुख का विपरीत नहीं बल्कि उसका सबसे अंतरंग साथी है।
मुझे लगता है हाँ, ये किताब यही दिखाती है कि खुशी और दुख दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं।
अंतरंग साथी।
हाँ, एक को नकार कर दूसरे को पाया नहीं जा सकता, और लोकतंत्र शब्द यहाँ बहुत मायने रखता है।
जैसे
इसका मतलब है कि हर किसी को अपनी खुशी का संस्करण चुनने का, उसके लिए वोट डालने का हक है। ये कोई ऊपर से थोपी हुई चीज नहीं हो सकती। जैसे मिन को आखिर में समझ आता है, ये एक साझा जिम्मेदारी है।
और ये अंतरंग साथी वाली बात उस अनुवाद वाले विचार से भी जुड़ती है?
एब्सोल्युटली जुड़ती है।
कि आप दर्द को मिटा नहीं सकते पर उसका मतलब बदल सकते हैं, उसे अपनी कहानी का हिस्सा बना सकते हैं।
हाँ, जैसे बा ने जेल में लिखा, मुझे एहसास हुआ कि मेरे बंदी बनाने वाले अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्य में विफल रहे थे, वे मुझे प्यार करना नहीं भुला सके।
ये प्यार ही उनका प्रतिरोध था।
बिल्कुल, उनका तरीका था अमानवीयता के बीच इंसानियत को जिंदा रखने का।
और प्रेम यहाँ सिर्फ एक भावना नहीं?
नहीं, बल्कि एक एक्शन है, एक विद्रोह है। बा का अपने साथी कैदियों के लिए प्यार, अपने परिवार के लिए, यहाँ तक कि सुंदरता के छोटे छोटे पलों के लिए प्यार, ये सब उनके जीने का तरीका था। ये उपन्यास दिखाता है कि प्रेम के कई रूप हो सकते हैं, सुरक्षा देना, सेवा करना, और शायद सबसे मुश्किल, समझने की कोशिश करना।
और जिस तरह वोंगी सब कहते हैं, उनकी भाषा।
हाँ, भाषा तो कमाल की है।
वो कवि हैं और ये उनके गद्दे में साफ छलकता है। कहानी यथार्थवादी है, किरदारों के रोजमर्रा के संघर्ष दिखाती है, पर भाषा का व्यात्मक है। वो साधारण सी चीजों में, रोजमर्रा की बातचीत में भी गहरी सुंदरता और मतलब ढूंढ लेते हैं। इसे शायद गीतात्मक यथार्थवाद कह सकते हैं।
हाँ, कह सकते हैं, यानी सच को कविता की आंख से देखना।
बिल्कुल।
हाँ, उनकी शैली आपको कहानी में खींच लेती है। वो खतों को, यादों को, वर्तमान की घटनाओं को बड़ी खूबसूरती से एक साथ बुनते हैं। समय सीधा नहीं चलता, यादों की तरह आगे पीछे होता है।
हाँ, मेमोरी की तरह।
और भाषा का इस्तेमाल, वियतनामी और अंग्रेजी के बीच किरदारों का झूलना, ये उनकी अंदरूनी दुनिया को और भी गहराई से दिखाता है।
कुल मिलाकर ये उपन्यास एक गहरा भावनात्मक अनुभव है।
बहुत गहरा।
ये दिल तोड़ता भी है और उम्मीद भी जगाता है। अप्रवासी अनुभव की कहानी होते हुए भी ये उन सवालों को छूता है जो हम सबके लिए मायने रखते हैं, जैसे परिवार का इतिहास, अपनी पहचान की तलाश, वफादारी और सच्चाई के बीच का चुनाव।
और ये खुशी के बारे में हमारी सोच को चुनौती देता है। ये सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर का एक तरीका है, जिसे मुश्किलों के साथ ही जीना पड़ता है।
हाँ,
ये पीढ़ियों के रिश्तों की उलझनों को समझने में भी मदद करता है। कैसे प्यार और नुकसान, सुरक्षा और बंधन, एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं।
वो की सबसे बड़ी खूबी शायद यही है कि वो व्यक्तिगत दर्द और उपचार को बड़े सामाजिक और ऐतिहासिक संदर्भों से जोड़ देते हैं।
हाँ, खुशी यहाँ सिर्फ एक निजी एहसास नहीं बल्कि एक राजनीतिक चुनाव भी बन जाती है।
अंत में ये किताब शायद यही याद दिलाती है कि अपने अतीत को समझे बिना, उसकी जटिलताओं को स्वीकार किए बिना, हम अपनी आने वाली खुशी की कहानी नहीं लिख सकते।
और ये कि विरासत में मिले जख्मों और सांस्कृतिक उलझनों के बावजूद अर्थ और खुशी खोजना मुमकिन है।
हाँ, अगर हम हिम्मत करें।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।